ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में का विशेष अंक। इसके अंतर्गत सुनिए साल 2024 वो मुकाम जो देश ने पहली बार हासिल किए। इसे तैयार किया है आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला ने। प्रस्तुत करता है अतहर सईद और सोनू सूद।
नमस्कार। साल 2024 की आखिरी शाम का आखिरी सुर्खियों में लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस विशेष अंक में हम याद करेंगे बीते साल में देश ने क्या कुछ पहली बार हासिल किया, कौन से वो मकाम रहे जिन्हें देश ने पहली बार छुआ, कौन सी वो उपलब्धियां रहीं जो पहली बार देश ने प्राप्त की।
अगले 15 मिनट हम बात करेंगे राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, अंतरिक्ष, खेल और अंतर्राष्ट्रीय जगत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पहली बार देश की उपलब्धियों की। तो आइए शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष में देश की ऐतिहासिक छलांग से।
2024 अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए उपलब्धियों से भरा साल रहा। देश ने इस साल 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। इस दिन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग की याद में मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
भारत की विकास यात्रा में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अमूल्य योगदान दिया है। पिछले वर्ष विक्रम लैंडर द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने का सीधा प्रसारण मैंने देखा था। सभी देशवासियों के साथ मैं भी गर्व का अनुभव कर रही थी।
सौर वायुमंडल के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों को हासिल करता रहा। 6 जनवरी को इस अंतरिक्ष यान ने अपनी लक्षित हेलो कक्षा L1 में प्रवेश कर इतिहास रच दिया।
5, 4, 3, 2, 1, 0 +5 seconds
लिफ्ट ऑफ नॉर्मल P1 ट्रैकिंग
P3 ट्रैकिंग
मैग्निफिसेंट लिफ्ट ऑफ ऑफ PSLV C-57 विद आदित्य L1 ऑन बोर्ड
+15 seconds
PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57।
इसी साल जनवरी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में ब्लैक होल जैसी खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। एक्सपोसेट ब्लैक होल का अध्ययन करने वाला भारत का पहला उपग्रह है। इसी के साथ भारत अमेरिका के बाद दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया जिसने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए एक समर्पित वेधशाला को स्थापित किया है।
इसी साल देश ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। नवंबर में देश ने अंतरिक्ष अभ्यास के नाम से अपना पहला आकाशीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से आयोजित ये अभ्यास देश में अपनी तरह का पहला ऐसा कार्यक्रम है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में देश के रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करता है और सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष क्षमता को एकीकृत कर और सशक्त बनाता है।
वहीं रक्षा क्षेत्र में भी इस साल देश ने कई उपलब्धियां हासिल की। देश का रक्षा उत्पादन पहली बार 1,26,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि पिछले साल के मुकाबले 16% से अधिक है।
इस साल देश ने रक्षा निर्यात में भी नई ऊंचाइयों को छुआ। देश का रक्षा निर्यात इस साल बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए पर पहुंच गया जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 32% अधिक है। देश ने रक्षा निर्यात में पहली बार इस ऊंचाई को प्राप्त किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में गुजरात के बड़ोदरा में देश के पहले सैन्य विमान संयंत्र टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। निजी क्षेत्र के इस पहले सैन्य विमान संयंत्र में C-295 विमान तैयार किए जाएंगे। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। C-295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहाँ दिखाई देता है।
डीआरडीओ ने इस साल नवंबर में ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक ऐतिहासिक क्षण था और इस उपलब्धि ने भारत को इस प्रकार की उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी क्षमता वाले चुनिंदा देशों के समूह में खड़ा कर दिया है।
इस साल 1 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना का पदभार ग्रहण किया। इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाली वे देश की पहली महिला हैं। साल 2024 भारतीय अर्थव्यवस्था के और सुदृढ़ होने का साल रहा। भारत की अर्थव्यवस्था इस साल विश्व की विशालतम अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी।
इस साल सितंबर में देश का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $1 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। देश ने ये उपलब्धि अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच हासिल की। इसमें से 69% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले 10 सालों में आया।
इस साल देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $700 बिलियन के पार पहुंचा।
वहीं भारत ने विदेश नीति में भी इस साल कई मुकाम हासिल किए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।
यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं।
वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी का दौरा किया, जो किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली फिजी यात्रा थी।
ये साल खेलों में उपलब्धियों से भरा रहा। 2024 को ओलंपिक खेलों में भारत के निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। इस साल पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 3 मेडल जीते। निशानेबाज मनु भाकर ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली महिला बनी। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और साथी निशानेबाज सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते।
Now when I look back at all the struggles, all the hard times that I went through, especially the Tokyo phase, I feel like everything was worth it. And now I have these 2 medals, these 2 beautiful piece of medals around my neck to be able to move on from that and look forward to what the future has to offer for me in the coming years.
वहीं पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय पैरा एथलीटों ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा। ये ऐतिहासिक प्रदर्शन पैरालंपिक खेलों में भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है।
शतरंज में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। डी गुकेश ने सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन को हराया।
All right, well, we finally got him, the world champion, 18th world champion, Grandmaster Gukesh Damaraju. Thanks for talking with me. When you look back at this match, what is the single moment you're going to remember the most?
Obviously, the winning moment, once I spotted Rook F2 Bishop D5. Yeah, for sure single greatest moment of my life.
It was the single time you broke character and started smiling, and who can blame you? That was awesome to see. Now, we found out you might go bungee jumping, but, you know, Magnus went and jumped in a pool. Can I interest you in a midnight swim?
And bungee jumping sounds way cooler. Yeah. I'm really looking forward to going back home and seeing all the people and the love and support, what it means to India. Yeah, I mean, what can I say? Yeah? Like, really going, really looking forward most to seeing my mom. But yeah, I think there'll be some cool things happening back home.
वहीं ग्रैंडमास्टर कोनेरु हम्पी ने फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया. उन्होंने साल 2019 में भी ये खिताब जीता था. कोनेरु हम्पी दो बार फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं.
It's possible because of the support from my family, like my husband and my parents, they support a lot. And especially my parents look after my daughter when I travel. And yes, it's not to become a world champion when you're 37. Quite difficult when you get older to keep that motivation and also to stay sharp when required. Well, I'm glad that I made.
इससे पहले सितंबर में बुडापेस्ट में हुए चेस ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने स्वर्ण पदक जीते. भारत के शतरंज के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ. चेस ओलंपियाड में विश्व के 190 देशों ने भाग लिया.
साल 2024 राजनीति में हासिल के लिहाज से भी कई मायनों में अहम रहा. पहली बार भाजपा ने केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई. देश की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर अपना प्रधानमंत्री चुना.
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा.
इसी साल ओडिशा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ. मई जून के महीने में हुए विधानसभा चुनाव में यहां पहली बार भाजपा ने बहुमत हासिल किया और अपने बलबूते पर सरकार बनाई. अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद इसी साल पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की. उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री चुने गए.
भारतीय न्यायिक प्रणाली में संशोधन के लिहाज से भी ये साल याद रखा जाएगा. इसी साल 1 जुलाई से देश में पहली बार 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए. इन 3 नए कानूनों ने भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली.
इसी साल नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया. ये अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है.
इस तरह 2024 भारत के लिए कई मायनों में उपलब्धियों से भरा साल रहा. हालांकि कुछ मोर्चों पर चुनौतियां भी सामने आई, लेकिन हमारे साहस और परिश्रम के आगे ये चुनौतियां भी आने वाले साल में उपलब्धियों में तब्दील होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है. इसी के साथ सुर्खियों में का ये विशेष अंक यहीं समाप्त होता है. नमस्कार.
अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में का विशेष अंक साल 2024, वो मुकाम जो देश ने पहली बार हासिल किए. इसे तैयार किया था आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला ने. प्रस्तुतकर्ता थे अथर सईद और सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.